मुश्किल अल्फाज की वजाहत। सूरत आल इमरान आयत नंबर 78 में लफ्ज है यलवूना, इसका मादा है लाम वो या, इसके मानी है मोड़ना, बटना, बल देना, लवल हबल, रस्सी बटना, रस्सी को मोड़ना, इसी तरह लवा यदहु, इसने हाथ मोड़ा या हाथ मरोड़ा। फिर आप देखिए कि एक तो है ना, जब रस्सी को बट दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो सबको नजर आता है ना, मादी तौर पर है ये। इसी तरह अगर जो है कोई अपने हाथ को मरोड़ता है तो भी नजर आता है, हाथ को मरोड़ा है या हाथ को मोड़ा है, नजर आ रहा है ना, जैसे आप देखें मैं अपने हाथ को मोड़ रही हूं। फिर इसी तरह ये लफ्ज जो है ये हिस्सी तौर पे मानवी लिहाज से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई शख्स जो है क्या करता है कि जैसे उसे कर्ज जो है वो मांगा जा रहा है और वो कर्ज अदा नहीं करता बल्कि टाल मटोल करता है। टाल मटोल करता है तो कैसे करता है कि अपनी जबान जो है उसका उलट फेर करता है, कभी इधर कभी उधर, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लियन बेदीने, लियन बेदीने के कर्ज के लिए वो टाल मटोल कर रहा है। फिर इसी तरह ये लफ्ज लिवा झंडे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, झंडा, लिवा, लाम वो अलिफ हमजा, अरबी जबान में झंडे को लिवा कहते हैं। अब झंडा क्या करता है, झंडे को आप बाहर पकड़कर खड़ी हो जाएं तो हवा से वो लहराता है, कभी इधर कभी उधर वो मुड़ता है, इसलिए उसका नाम ही लिवा इन्होंने रख दिया। तो यहां पे यलवूना मानी है कि जबान का उलट फेर करते हैं, पढ़ते हुए जबान से अल्फाज को इस तरह से पढ़ते हैं कि अल्फाज जो हैं वो हैं कुछ और कुछ और महसूस होते हैं, या फिर ये कि मानी के लिहाज से जबान में हेर फेर कर देते हैं, लिवा मोड़ तोड़ कर देते हैं। ठीक है, यलवूना अलसिनाता हूं, अलसिनाता पढ़ी चुकी हैं, लाम सीन नून इसका मादा है, और लिसान जबान को कहते हैं, ये जबान जो गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है इसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और अलसिना यहां पे क्या है, अलसिना, तो ये जमा है जबानों को। और एक होता है ना ये जबान जो हम सबके मुंह के अंदर है, जिसे हम खाने को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, और ये जब हरकत करती है तो बोल सकते हैं, है ना। और एक होता है ये मुख्तलिफ जो लुगत के एतबार से जबाने हैं, बोलियां, पंजाबी जबान, उर्दू जबान, इंग्लिश जबान, फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो डिफरेंट जो मुख्तलिफ जबाने हैं उनके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बोलियों के लिए भी। आयत नंबर 79 है, 79, रब्बानीयीना, इसका मादा तो यही है रा, बाबा, रब, और इसी से ये मुबालगे का सीगा है, नून और अलिफ का इजाफा मुबालगे के लिए है। देखे ना रब, तो रब्बा, बा के साथ क्या लग गया, रब्बा अलिफ लग गया और फिर नून का भी इजाफा हो गया, तो रब्बानीन, रब्बानीयीन। तो ये इजाफा जो है जैसे मुबालगे के लिए होता है रब्बानीयुन, इसी तरह बड़ी दाढ़ी वाले को कहते हैं लहयानीयुन, लहया अरबी जबान में दाढ़ी को कहते हैं लहया, तो फिर लहयानीयुन जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी हो तो उसको कहते हैं लहयानीयुन। फिर ऐसे शख्स को जिसकी बड़ी बड़ी लटे हैं जुम्मानीयुन, फिर मोटी गर्दन वाले को रकाबानीयुन, रकाबतुन गर्दन है ना, तो रकाबानीयुन। तो आपके सामने नून और अलिफ का इजाफा करके मैंने चंद और अल्फाज भी पढ़े ताकि आपको अंदाजा हो कि यहां पे नून और अलिफ का इजाफा जो है वो मुबालगे के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि रब्बानी बन जाओ, रब्बानी यानी अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले के लिए ये लफ्ज जो है फिर इस्तेमाल किया जाता है। तदरुसूना दाल रासीन, इसके मानी होते हैं इल्म का असर कबूल करना, इस तरह पढ़ना कि निशान बाकी रह जाए, याद रह जाए। तो इसी से ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दरसो तदरीस के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए। आप भी इस्तेमाल करती हैं कि आज दर्स है, और मुदर्रिसा, दर्स देने वाली को मुदर्रिसा कहते हैं, और मदरसा भी वैसे आप देखें तो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि वहां जहां जाकर लोग जो है वो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए कुरान में वैसे पांच लफ्ज आए हैं। पहला है करा, या फिर आप इकरा के पढ़। दूसरा है तला, तला यतलू तिलवन, किसी चीज के पीछे पीछे आना, बार बार पढ़ना, तिलावत। और ये लफ्ज जो है वैसे तो किसी भी किताब के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये तिलावत का लफ्ज खास तौर पर अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताबों के पढ़ने के लिए मखसूस है, तिलावत इल्हामी किताबों के लिए। फिर है रत्तल, किसी चीज की खूबी आराइश और भलाई को कहते हैं, सहूलत से हुस्ने तनासुब के साथ किसी कलमे को अदा करना, तरतील। आप पढ़ रही है ना तरतील और तजवीद, और सूरत मुजम्मिल की आयत नंबर 4 वरत्तिल कुरान तरतीला, मानी क्या है कि कुरान मजीद को खूबी के साथ, खूबसूरती के साथ, आराइश भलाई खुशुलहानी हुस्ने अदायगी खुश आवाजी ठहर ठहर कर, जो भी उसके तजवीद के कवायद है, रमूज और औकाफ है, कहाँ रुकना है कैसे रुकना है, उस लिहाज से पढ़ना। तो रत्तल तरतील। तीसरा लफ्ज है दरासा, दरासा। और दरासा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इल्म को याद करने के लिए मुतवज्जे होना, इल्म को हिफ्ज करना, जब्त करना, कहते हैं असल में दरासा कहते हैं पुराना होने को, बोसीदा पुराना, जैसे कपड़ा पुराना हो जाए बोसीदा हो जाए तो दरासा सौब। अब इल्म भी जब आप याद कर रहे हैं, आपके जहन में बाकी है, आपको याद हो गया, तो वो इल्म जो पुराना हो गया, याद हो गया पुराना हो गया। मुसलसल पढ़ने से जो है सबक याद होता है ना, तो आज नया सबक है और जो पिछला सबक है अब वो आपके लिए पुराना हो गया, अब आपको वो याद हो गया, आपके हाफिजों में वो महफूज हो गया। तो दरासा का लफ्ज जो है मुसलसल और बकायदा पढ़ने के मानी में आता है, बकायदा सीखने के लिए और उसको याद करने के लिए, उसको जब्त करने के लिए, दरासा दरसो तदरीस। और फिर ये लफ्ज पढ़ने पढ़ाने, एक दूसरे को पढ़कर सुनाने और वहां पढ़ना, इस तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा लफ्ज है अमला, और इसको आप याद रख सकती हैं इमला से, इमला से। और ये दो मादों के साथ आता है, मीम लाम लाम भी और मीम लाम या भी। आपने पीछे पढ़ा था ना कि वो इमला करवाए, यहां पे वो आयते दैन आपने पढ़ी थी, आयते दैन। तो दोनों सूरतों में मानी एक ही है, तहरीर करना कराना लिखवाना, क्योंकि एक आदमी बोलता जाता है दूसरा लिखता जाता है। और बाज कहते हैं कि लिखी हुई तहरीर को की जो है वो इमला करवाना उसके लिए आता है, कि इबारत को पढ़कर सुनाना, तो लिखी हुई इबारत पढ़कर सुनाना ये है इमला करवाना। तो पांच लफ्ज हैं जो कि पढ़ने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मीसाक, वोसाकाफ, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, अहद के मानों में आपने इसको पढ़ा था, और मानी इसके क्या पढ़े थे? असल में मैंने आपको बताया था कि रस्सी से जैसे जब किसी चीज को बांध दिया जाता है ना तो वो फिर मजबूत हो जाती है, तो उसी से फिर ये लफ्ज जो है ऐसे अहद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको तहरीर या तकरीर के जरिए जो है वो मजबूत कर लिया हो। मिसाके लखनऊ, मिसाके मदीना, ये आपने अपनी, अगर आप अपनी याददाश्त जो है उसको अपने सामने रखें तो आपने ये अल्फाज पढ़े हुए हैं, मिसाके मदीना, मिसाके लखनऊ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहद जाते ही मदीना में किया था वो मिसाके मदीना है, फिर वो लखनऊ जो इंडिया में एक अहद हुआ। तो इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, बस तवज्जो की जरूरत होती है कि उसको जो है वो याद रखा जा सके। आयत नंबर 81 में लफ्ज है वला तंसुरुन नहु, क्या रूट है इसका? शाबाश, नून स्वाद रा इसका मादा है और इसके मानी है मदद करना, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई हो, और अंसार, अंसार कौन थे? मदीना के जो सहाबा थे, अंसारी सहाबा, वो अंसार कहलाए क्योंकि जब मक्का से मुसलमान हिजरत करके गए तो उन्होंने अपना सब कुछ जो था वो उनके लिए जो है वो खोल कर रख दिया, उनके सामने पेश कर दिया, इसलिए उनको जो है वो अंसार कहा जाने लगा, अंसार। और आपने जो है वो पढ़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने साथ दिया उनको क्या कहते हैं? हवारी, हवारी। और उन्होंने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मन अंसारी इल्लाह, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार, तो उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह। और वैसे उनका नाम क्या था? हवारी, खालिस चीज को कहते हैं ना, बड़े खालिस थे वो लोग। तो हर दौर में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो बड़े खालिस और मुखलिस होते हैं और वो दीन का साथ देते हैं। आयत नंबर 81 में फिर लफ्ज है इसुरी, इसुरी, इसका रूट है अलिफ स्वाद रा, और इसके मानी अहद के भी होते हैं, इसके मानी बोझ के भी होते हैं, इसुरी। और मैंने बताया था कि अलिफ स्वाद रा, और अलिफ पर आप फिर अराब दे दें तो वो हमजा बन जाएगा ना, हमजा स्वाद रा। इसके अंदर खास तौर पे दो बातें पाई जाती हैं, एक गिरा लगाना, दूसरा उसको जबरदस्ती रोक लेना। और जब आप किसी चीज पर गिरा लगा देती हैं तो गिरा लगना ही उसको जबरदस्ती रोकना है ना। आपकी क्लास फेलो आपके साथ अब ये कुर्सी पे बैठी हुई है, और एक जमाने में जब तालबेलवी में होते थे तो लोग पीछे से दुपट्टा बांध देते थे है ना, किसी भी वजह से तो ऐसे दुपट्टा बांध दिया। अब वो जब उठने लगी है तो अब वो एकदम जो है वो उठने लगी है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही, जा नहीं पा रही या गिर गई है। वो मजाक हंसी या जिस भी तरह से वो तालबेल आपस में करते थे क्लास फेलो, तो क्या है कि नंबर एक गिरा लगाई, नंबर दो उसको जबरदस्ती रोक लिया। अब वो वैसे तो ना रुकती ना, लेकिन अब जबरदस्ती रोक लिया। अब इसी से ये लफ्ज आपने याद रखना है कि अहदो पैमान की पाबंदी, शरई अहकाम की तामील की जिम्मेदारी का बोझ, इसर। और आपने ये लफ्ज पढ़ा था, पहले भी कई दफा पढ़ा है, और खास तौर पे आपने जो है जब सूरत अल बकरा का इख्तिताम किया तो आपने कहा मुसलमानों को जो दुआ सिखाई गई है वला तहमिल अलैना इसरन, एक ही लफ्ज है, बार बार आप पढ़ती हैं, आपको अब आ जाना चाहिए। और वैसे आप देखें तो ये लफ्ज जो है ये अहद के लिए भी इस्तेमाल होता है, बोझ के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, गिरा लगाने के लिए भी होता है। और एक छोटी सी, छोटा सा एक होता है पर्स या बैग नुमा चीज, उसके लिए भी आता है, क्योंकि वो छोटा सा पर्स जिसमें लोग चीजें अपनी डाल लेते हैं हिफाजत के लिए, तो फिर गिरा लगा देते हैं, ऐसे खींच दिया। तो हाँ, तो असल बात पता है क्या है, आप जब भी किसी लफ्ज को याद करती हैं ना तो उसके जो लुगत के एतबार से बुनियादी मानी है ना, जो असल मानी है, वो आप याद कर लें, फिर आप उसके फैमिली के बहुत से अल्फाज अपने जहन में लाया करें, अपना मामूल बना लें, एक दो तीन चार पांच, तो फिर क्या है कि वो लफ्ज जो है ना वो याद हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे मिसाक की मिसाल दी, अब यहाँ पे इस सुरी के लिए मैंने आपको दुपट्टा बांधने की मिसाल ही दे दी। इससे आपने दो बातें याद रखनी है, गिरा लगाना, फिर उसको जो है वो जबरदस्ती रोक लेना। फिर इस तरह ये लफ्ज अहद पैमान की पाबंदी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और बोझ जो होता है उसको क्या करते हैं, बोझ को जब आप अपने ऊपर लाते हैं या आप उठाते हैं तो ऐसे थोड़ी वो बोझ पकड़ा जाता है, तो आप उसको या तो किसी कपड़े में बांधते हैं या किसी रस्सी से बांधते हैं, किसी चीज में लपेट लेते हैं, फिर उसको आप पकड़ कर अपने ऊपर रख लेते हैं, अपने साथ ले लेते हैं, तो रोक लिया ना आपने उसको। तो इस तरह आप जो है ना आप इसको याद कर सकते हैं। और इसर का लफ्ज जो है राह हक को इख्तियार करने में जो रुकावटें होती है ना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी मुआशरे के रस्म और रवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो मुआशरे के जो रस्म और रवाज होते हैं वो क्या होते हैं, खुद ही उन्होंने गिरे लगाई होती हैं और फिर जबरदस्ती अपने ऊपर उनको लाद लिया होता है, उस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कुरान में भी इस तरह इस्तेमाल हुआ है। सुरी और आयत नंबर 83 में लफ्ज दीन है और दाल पर फतह दे दी जाए तो क्या बन जाएगा, दैन। और दैन के मानी क्या है, कर्ज, कर्ज है। और दीन जो है जिंदगी गुजारने का वो तरीका जो अल्लाह ताला ने जो है हमें दिया है इस्लाम की शक्ल में। यबगूना, बगा यबगी चाहना, और कभी ये बगावत के मानों में इस्तेमाल होता है बुरे मानों में, और वैसे ये कि किसी अच्छी चीज को भी चाहा जा सकता है। तवन व करहन आयत 83 में है और इसके मानी है तवन का खुशी से करना, और जैसे अतात है मुती मुता, तो आप इसकी फैमिली के बहुत से अल्फाज आप याद कर सकती हैं। और करहन, करहन जो है जैसे जो चीज ना पसंद हो, कराहत, नागवार, मकरूह, ला इकराहा फी दीन कद तबयन अर-रुश्द मिन अल-गय। शाबाश, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है। तो जब एक लफ्ज में आपसे आप पहले भी पढ़ चुकी हूँ और बार बार वो आए ना, फिर आपको और वो चीजें याद होनी चाहिए। इतनी ज्यादा इससे मोहब्बत करें, कुरान से इतनी ज्यादा मोहब्बत, बार बार घर बैठकर जाकर सोचा करें, पढ़ा करें। अच्छा, जैसे अब आपका तीसरा पारा मुकम्मल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो पहला पारा मुकम्मल हुआ, आपको हर लफ्ज ही नया लगता होगा और मुश्किल लगता होगा। दूसरा मुकम्मल हुआ, लगा कि नहीं एक सीढ़ी चढ़ गए हैं। अब तीसरा मुकम्मल हुआ तो लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है, अब कैसा लग रहा है, पहले की निस्बत लग रहा है कि नहीं आसान है, ये मुश्किल नहीं है। और स्पेशली जो इसका ये तरीका है कि पहले लफ्जी तर्जमा अलग कर लिया, फिर इसका रूट वर्ड हमने अलग कर लिया, फिर रूट वर्ड में भी उसके फैमिली के लफ्ज, जैसे एक रूट से और कितने जो है वो जड़े निकलती हैं, कितने दरख्त तने फल फूल, कितने और अल्फाज बनते हैं। मसलन आप देखें कि एक दूध है, दूध से आप क्या चीजें बनाती हैं, बेसिकली तो वो दूध है ना। आपने उससे दही बनाया, आपने उससे लस्सी बनाई, आपने उससे मक्खन बनाया, फिर आपने खीर बनाई, फिर रसमलाई बनाई, और फिर जो है पता नहीं क्या क्या बनाया। तो रूट आपको पता है ना कुछ चीज का, असल में रूट कॉज क्या है। तो जिस चीज की रूट को समझ में आ जाती है, फिर वो जहां जहां जिस जिस अल्फाज में भी आए, बहुत मोटा आए, छोटा आए, पतला आए, जैसे भी आए, फिर वो लगता है नहीं नहीं ये इतने डरने वाली बात नहीं है, सब इजी है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आयत नंबर 84 में अहम लफ्ज है अल असबात, असबात। और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है औलाद के लिए, जबकि कुरान में औलाद के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं 8। और असबात जो है ये दूसरा दर्जा है, सीन बात तो इसका रूट है, और असल में ये कहते हैं औलाद की औलाद को, दूसरी नस्ल को कहते हैं। ज्यादातर ये लफ्ज नवासों के लिए मखसूस है, जैसे पोतों के लिए आता है हफीद या हफदा, नवासों के लिए असबात आता है, लड़कियों की औलाद नवासे नवासी फिर आगे तक। और वैसे जो है ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, नवासे भी हैं नवासिया भी हैं और आगे तक। अब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है अल असबात। आयत नंबर 91 में लफ्ज है मिल उ, यह आप पढ़ चुकी हैं पैसे, पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसका यही मादा है मीम लाम हमजा। हाँ, पालल मलाऊ, सरदारों ने कहा। तो मीम लाम हमजा इसके मानी होते हैं भरावा होना, अब आप देखें कि मला सरदार को कहते हैं और मला भरने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इंतलाती ये मानी भर जाना। अब जो है जैसे बर्तन जो है अगर भर जाए, मला उल इना, पानी या किसी भी चीज से बर्तन जो है ना वो भरा हुआ है। फिर इसी तरह जो सरदार होते हैं उनकी बड़ी पुरवकार शख्सियत होती है, रोब दाब वाली शख्सियत होती है, तो जैसे उनकी शख्सियत जो है वो रोब से भरी हुई है, वकार से भरी हुई है। या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि जिस महफिल में सरदार बैठते हैं तो वो महफिल जो है वो भर जाती है। तो मला अल इना, किसी बर्तन को भर देना, और मिलू किसी चीज की वो मिकदार जिससे कोई बर्तन भर जाए। यहाँ पे जो है वो मला नहीं है, नीम के नीचे जेर है मिलू, तो मिलू के मानी है किसी चीज की वो मिकदार जिससे कोई बर्तन भर जाए। ठीक है, अल्लाह ताला कयामत के दिन जहन्नुम से कहेंगे यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलाती व तकूलु हल मिन मजीद, कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी और चाहिए और चाहिए। हल मिन मजीद, बाज मुफस्सरीन कहते हैं कहेगी और चाहिए, और बाज कहते हैं इसके मानी ये हैं कि वो कहेगी कि पहले ही मेरे अंदर इतने ज्यादा हैं कि क्या अभी और भी बाकी है, कुछ और भी अभी है, अभी और लोग रहते हैं, पहले ही मैं भरे हुई हूं। तो मिलू भरा हुआ होना, जहाबन सोना है, और इफ्तदा या पढ़ी चुकी है फा दाल या फिदिया देना। अलीम हमजा लामीम, अलीम दर्दनाक है, नासिरीन नासिर इसका वाहिद है और नासिरीन इसकी जमा है। और वैसे ये कि वाहिद जमा के लिहाज से आप तीनों पारों के वाहिद जमा भी अलग अलग करती जाए, जो नए लफ्ज आते हैं उनको भी आप अलग करती जाए। जैसे अब तीसरा पारा आपका मुकम्मल हुआ, आज आप जब घर जाएंगी ना आप अपने लिए जरूर ये चीज मुकर्रर कर लें कि जितने भी इसके बिल्कुल वो लफ्ज जो बिल्कुल नए आए थे या मुझे नहीं आते आप वो उसको अलग करके लिखें। सबसे पहले आप ये करें, हो सकता है एक के 20 लो, एक के लिए 20 हो जो उसको नहीं आते और नए हैं, और एक के लिए वो 5 हो और एक के लिए 50 हो, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मन जद्दा हुआ ज्यादा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया, या ऐसे लफ्ज जो आपको बहुत मिक्सअप होते हैं उनको आप अलग कर लें। इसी तरह जवील अजदाद को अलग करती जाए, पहले पारे में इतने आए, दूसरे में इतने और तीसरे में इतने आ गए, इस जिन्स को अलग करती जाए, पहले में इतने आए, दूसरे में इतने आए, तीसरे में इतने आए। जब 30 पारे पूरे मुकम्मल हो जाएंगे तो आपके वाहिद जमा भी अलग हो जाएंगे, आपके इस्म जिन्स भी और आपके जवील अजदाद भी, आप बहुत अच्छी एक चीज जो है बन जाएगी आपके लिए इंशाल्लाह। फिर इसी तरह आप एक काम और जरूर करें कि हर पारे का निचोड़, जैसे पहले पारे में आपकी कैफियत क्या थी तब भी मैंने आपको ये होमवर्क दिया था ना, तो अब यहां पर भी जो है ना आप इसको अलग कर लें कि तीसरा पारा मुकम्मल होने पर इसकी क्या चीजें हैं जो आपके सामने जो है वो आई हैं, कौन सी आयत ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया, कौन से वाक्य ने आप पर जो है वो बहुत ज्यादा असर किया। तो अब पूरा तीसरा पारा मुकम्मल करने के बाद आप जरूर घर बैठे, ये आपके पास जो वीकेंड है ना इसमें आप बगैर तर्जमे के कुरान लें, जब आप अपना ये सोचें ना कि तीसरे पारे में किस चीज ने मुझे बहुत मुतासिर किया, या मेरे लिए अब अमल के उसूल क्या है, या अब मैं इस पर अब मैं कैसे सोचती हूं, अब मेरे दिल का हाल क्या है, तो बगैर तर्जमे के कुरान की आयात को देखें, वरक पलटें बार बार, कभी आगे कभी पीछे, कभी सोचें कि कुल पारा जो है ना इसके अंदर क्या चीज है, फिर उसके बाद जो है ना आप तर्जमा देखें, फिर बगैर तर्जमे के देखें। जैसे आप नया सबक होता है तो जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं पता है वो क्या करते हैं, अब तो तीसरे पारे का इख्तिताम हो गया, अब आपको बहुत अच्छे नहीं बहुत अच्छे तालिब इल्म बनना है ना इंशाल्लाह, अब आप क्या करें कि चौथा पारा जो शुरू करना है ना ऐसे ही उसको बगैर तर्जमे के देखें, और जो बिल्कुल आपको नहीं आते उसको सर्कल कर लें, उसको हाईलाइट कर लें। और आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप अगले सबक से पहले, जैसे अगला दिन जब होता है नया सबक शुरू होता है उससे पहले आप एक दफा देख कर आया करें बगैर तर्जमे के खुद से ही कि क्या है। मेरी एक तालबिल्म थी, मतलब मुख्तलिफ तालबिल्म रहे, और एक मेरी तालबिल्म थी बहरीन में, और वो इंडिया की रहने वाली थी, बहुत नेक खातून थी, मैं बड़ी उनके लिए दुआ करती हूँ। और आप एक बात याद रखें कि मैं इस कुर्सी पे बैठ जाती हूँ कि जो जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं आपको बता दूं, और लेकिन असल बात क्या है कि आपसे भी मैं सीखती हूँ। आपके जो वाकयात हैं, आपकी बातें हैं, आपकी ईमान अफरोज बातें या आपके अमल में जो तब्दीली आती जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके साथियों पे भी असर डालती है और असातिज़ा पे भी असर डालती है। हम सब एक दूसरे के नेकी के रास्ते के मुसाफिर हैं ना, साथी हैं। तो बहरीन में जो लोग थे उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे, और हर जमाने में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे साथी दिए, बहुत अच्छे तालिबे इल्म दिए। उसमें वो मेरी जो तालिबे इल्म थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ उर्दू वाले थे कुछ इंग्लिश वाले थे। उस क्लास में इंग्लिश के काफी लोग थे, और वैसे भी इंडिया के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानियों की अच्छी नहीं, आपकी भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि अब उनके शौक का ये हाल था कि वो उर्दू में मुझसे सुनते थे, इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन एक जो मेरी तालिबे इल्म थी उसको उर्दू नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी। वो मेरा उसने उर्दू सीखी और उसने कुरान सीखा, और पहले टेस्ट में उसका जब मैंने रिजल्ट बताया तो उसके एक नंबर था, और जब उसने पूरा कोर्स मुझसे मुकम्मल किया तो उसने 80% से ऊपर मार्क्स लिए। उसने उर्दू भी सीखी और साथ साथ उसने कुरान भी सीखा। आप सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। इंग्लिश में बेस्ट थी लेकिन इतनी बामल थी कि दोस्त के माशाल्लाह बेटे थे, और जब कुरान मुकम्मल हो गया तो कहने लगी कि अब मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। उसकी सास थी गालिबन, जो मुझे याद है बेवा थी, अकेली थी, तन्हा थी, और कहती थी कि अब मैं उसकी खिदमत के लिए जाना चाहती हूँ, पर मेरे शौहर के लिए मुश्किल है, वो कहते हैं कि मतलब मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। तो या हो सकता है देवर जेठ हो, मुझे नहीं पता, जो भी मसाइल थे ऐसे थे कि जिसमें वो अपने उसको उसकी सास को जरूरत थी कि वो उनकी जाके खिदमत करे। तो कहती थी कि अब मैंने जो पढ़ लिया ना, अब इस पे अमल करना चाहती हूँ। और फिर उसने अपने शौहर को राजी किया अपनी सास की खिदमत के लिए, अपने दोनों बेटों को लेकर फिर वो इंडिया चली गई। और तकरीबन फिर उसका मुझे 10 साल बाद जो है वो फोन आया, जब मेरे शौहर बहुत ज्यादा बीमार हुए थे, तो रात के 1 बजे, और फिर पता चला कि अब वो दोबारा इंडिया से अब बहरीन आई है। उसको पता चला कि मेरे शौहर बहुत बीमार है, तो इयादत के लिए एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया, और वहां पे दारुल ईमान के नाम से हमारे हमारा इंस्टीट्यूट था जिसमें हम काम करते थे, पढ़ाती थी मैं। तो कहने लगी कि वहां पे इंडिया में जाके मैंने दारुल ईमान, मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसपे मैं लोगों को पढ़ती पढ़ाती हूँ, और कई लोग इंडिया से आते हैं ना, उसकी खबरें देते हैं, मुझे बताते हैं। अभी कल परसों भी कोई जिक्र कर रहा था कि वो जो है वो आपका जिक्र कर रही थी। तो पता है असल बात क्या है, ना तो कभी किसी को हकीर समझना चाहिए, ना किसी को कमजोर समझना चाहिए, ना अपने आप को बहुत अच्छा समझना चाहिए। तो एक तो उस्ताद की ये जिम्मेदारी होती है हर एक पर मोहब्बत की उसकी नजर हो, प्यार और शफकत, और हर एक को वो प्रमोट करे, क्योंकि वो तो उसका असासा है, वो तो उसका सरमाया है, वो उसके लिए सदका जारिया है। आपने भी कल उस्ताद बनना है इंशाल्लाह, और आपस में साथियों की, क्लास फेलोज की भी ये ड्यूटी है। एक को रूट वर्ड लिखने मुश्किल लगते हैं, एक नोट्स लिखने में कमजोर है, जैसे आपकी ये क्लास फेलो जो है अल्लाह ताला की तरफ से इसके हाथ सुन हुए हैं इस वक्त, है ना, उसके हाथों में ये तकलीफ है कि लिख ही नहीं सकती। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप लिखते हैं, आप लिखकर उनको कोई भी फोटो कॉपी करके दे सकता है, और आप देते हैं माशाल्लाह, आप उसको बताते हैं, और वो जबानी याद करके जो है ना फिर सुना सकती है। एक बहरीन में मेरी तालिबे इल्म जो थी वो भी लिख नहीं सकती थी, उनको लिखना नहीं आता था, बुजुर्ग थी, जरा बूढ़ी थी, लेकिन सबक जबानी याद करके सुनाती थी। जो भी होता था ना, कहती थी कि मैं इसको जबानी याद करती हूँ और आके सुनाती थी। तो अक्सर वो जन्नत की बात करती थी, तो ऐसे उसका नाम जो था ना, जैसे लकब नहीं होता, जन्नत भी नाम ही उसका रख दिया अक्सर होता। तो क्योंकि जब वो बात होती है वो जन्नत की बात करती थी ना, अब वो मूव होके पाकिस्तान जा चुकी हैं, तो जब भी वो क्लास में आती तो मैं कहती थी कि वो जन्नत बीबी कहाँ है। मतलब इसका ये नहीं, मतलब हम तो नहीं फैसला कर सकते कि इसको जन्नत मिलेगी कि नहीं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन उसका जो जन्नत का शौक था वो जन्नत बीबी। तो असल बात यह है कि अब जो है ना थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और कोशिश करें और मेहनत करें। मैंने कहा ना खड़े हो जाएं, एक तो है ना वैसे खड़े रहना, और एक है कि वैसे दीन के लिए अब अपने आप को मुस्तैद करें, मेहनत करें, अपने ऊपर गौर करें कि मैं अपने वक्त की ऑडिटिंग कैसे करूं, किस तरह मैं ज्यादा मेहनत करूं। और आप भूल जाएं इस बात को कि मैं कर नहीं सकती, नहीं का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दें आपको, हाँ बिल्कुल खुदा हाफिज कह दें। जैसे ये पीले पीले जर्द पत्ते नहीं होते खिजा के, कैसे वो दरख्तों से गिर जाते हैं, जरा सा एक बच्चा भी उसको हिला दे या हवा भी चले फिर वो ढेरों के हिसाब से कितने अनगिनत पत्ते, फिर अब यहाँ तो मशीनें लगी हैं, वो साफ करती हैं, उसको ले जाती हैं। जब वो पत्ते गिरते हैं, जब वो पत्ते दरख्त पर लगे होते हैं और जमीन पर भी बहुत होते हैं, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह करे कि हम सब अपने गुनाहों को भी इस तरह खुदा हाफिज कह दें, है ना। और इसी तरह हम अपनी जो कमजोरियां उनको भी खुदा हाफिज कह दें। मुझे गिरना नहीं आता, मुझे पीछे रहना नहीं आता, ये मैं कह रही हूं कि हम सब ये अपने आप से बातें किया करें। और मुझे वक्त जाया करना नहीं आता, मेरे अंदर मायूसी नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ अपने हाथ का मुक्का बनाकर अपने आप से बातें किया कर। यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो वो मुझे तालबिल हमेशा याद आती है कि पहली क्लास में एक नंबर और फिर उसने 80% से ऊपर मार्क्स लिए, और पता नहीं अमल के मैदान में वो शायद पता नहीं क्या उसका मकाम होगा, कितनों से वो आगे निकल दी होगी।